مومنین یہ سلسلہ جاری و ساری ہے سورہ انبیاء کا، اور یہ آیت پڑھنے کا جو شرف حاصل کرا ہے 70ویں آیت تھی، اور انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا، حالانکہ حضرت ابراہیم کا نام نہیں ہے اس آیت میں، اور انہوں نے ان کا برا چاہا تو ہم نے انہیں خسارے میں ڈال دیا۔ تو سلسلہ اس کا ہے کہ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو اللہ نے آگ کو سرد کر دیا، اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا کہ انہوں نے ان کا برا چاہا تو ہم نے ہی ان کو خسارے میں ڈال دیا، کیونکہ اللہ نے خسارے میں ڈالا، وہ مغلوب ہو گئے جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بالکل اطمینان سے بیٹھے ہیں آگ کے بیچ میں، تو وہ مغلوب ہو گئے اور نمرود کو خوف آ گیا۔ اب نمرود اتنا پریشان ہو گیا کہ یہ ابراہیم کے ساتھ اتنا بڑا معجزہ ہوا، لوگ اس کے پیچھے چلنے لگے، تو کہا کہ اب کیا کرو، ان کو شہر کے باہر نکال دو، ہار گئے وہ لوگ۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ سائرہ کے ساتھ اور لوط علیہ السلام کے ساتھ عراق سے شام کی طرف چلے گئے۔ وَنَجَّيْنَاهُ لُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو، اس میں حالانکہ آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا نام نہیں آیا، اور ہم نے ان کو اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے دنیا والوں کے لیے جس میں ہم نے برکات رکھی تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کرا، ابراہیم علیہ السلام کو جو تفاسیر ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو ان کی بیوی سارہ کے ساتھ لوط علیہ السلام کے ساتھ بچا لیا اور اس سرزمین کی طرف لے گئے جہاں برکات رکھی تھی۔ کون سی زمین تھی؟ شام کی اور فلسطین کی، جہاں تمام برکات اللہ نے رکھی تھی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَ وَكُلًّا جَعَلْنَاهُ صَالِحِينَ، اور ہم نے ان کو انہیں انعام میں اسحاق اور یعقوب دیے تھے، اور ہم نے سب کو صالح بنایا تھا۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے کیا کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کہ ہم نے ان کو اسحاق بھی دیے اور یعقوب بھی دیے انعام میں، وہ کلن جعلنا صالحین، اور سب کو ہم نے نیکوکار بنایا تھا۔ تو یہ جو لفظ آیا نافلہ جو آیا نا، تو چھٹے امام فرماتے ہیں نافلہ مطلب ایک طرح کا انعام ہے، لیکن انہوں نے کہا، چھٹے امام نے فرمایا کہ نافلہ سے مطلب بیٹے کے بیٹے کو بھی نافلہ کہتے ہیں، پوتا، کیونکہ یہ اس میں اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں۔ تو یہ بحث ہے کہ اسحاق کا نام کیوں آیا، حضرت اسماعیل کا نام کیوں نہیں آیا اس میں؟ تو اس لیے کہا کہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ اسحاق نام اس لیے آیا ہو کہ اسحاق علیہ السلام جس معجزے سے پیدا ہوئے تھے، کہ جو ان کی ماں تھی بانج تھی، بڑھاپے میں پیدا ہوئے تھے، تو شاید ہو سکتا ہے اس لیے ان کی اس فضیلت کی وجہ سے ان کا نام آیا۔ لیکن کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ کلن جعلنا صالحین، یہ سب کے سب نیکوکار تھے۔ اب یہ جو اس کی بات کی آیت بڑی مشہور آیت ہے، آپ توجہ فرمائیں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر کی ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان پر نیکیوں کرنے کا، نماز قائم رکھنے کا، اور زکاۃ دینے کی وحی کی، اور ہماری عبادت گزارتے۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے، اس کو اپن دھیرے دھیرے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو آیت ہے، جعلہم ائمتین یہدون ابھی امرینا، تو ہم نے ان کو امام بنایا تھا، تو یہ کون سی اماموں کا تذکرہ ہو رہا ہے اس وقت؟ تو میزان میں کہا گیا کہ اس وقت تین انبیاء کی بات ہو رہی ہے۔ کون انبیاء؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، تینوں کو اللہ تعالیٰ نے دو آفس دیے تھے، ایک تو پیغمبر تھے وہ، اور امام تھے، دونوں مقام پہ وہ فائز تھے، دونوں کے دونوں مقام پہ فائز تھے۔ اب پھر امام رضا علیہ السلام کی ایک طویل حدیث ہے، اس میں سے ایک چھوٹی بات کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ساری آئی امامت، وہ آخری میں وہ امامت اور رسالت سرکار کو ملی، سرکار ختمی مرتبت کو ملی، وہ پھر انہوں نے اس میں سے امامت اپنے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دی امامت، اور پھر ان کی ذریت میں امامت چلتی رہی जब तक के आखिर जमाने आ गए, इस तरह से इमामत का सिलसिला जारी सारी रहा, लेकिन रिसालत ख़त्म हो गई। तो इसके अंदर बयान किया गया कि इमाम कौन होता है। यहूदून अभी अमरीना, जो हमारे अमर की हिदायत करते थे और हमने उन पर नेकी करने का, वह अवहैना इलैहिम फ़ालल खैरात, और हमने उन पर को वही की थी नेक अमल करने की और नमाज कायम रखने की और ज़कात देने की, ये चीज़ें करी थी, और वो लोग नेक, वो लोग इबादत गुजार थे। मीज़ा ने इतना खूबसूरत बयान करा है, इसको तफसील से अपने पास वक्त नहीं है, लेकिन कहा कि पैगंबर में और इमाम में क्या फ़र्क होता है। पैगंबर वो होता है जिस पर वही का सिलसिला आता है और शरीयत बताई जाती है कि शरीयत है, और वही का सिलसिला आता है, फरिश्ते वही लेके आते हैं, वो पैगंबर शरीयत लोगों को बताता। इमाम कौन होता है? इमाम वो होता है, खुसूसन उन इमामों की बात हो रही जो अहले बैत की इमाम है, कि उन पर वही नहीं आती है, कोई नई शरीयत नहीं आती है, और होता क्या है कि जो भी उन पे इल्हाम होता है अल्लाह की तरफ से दिल में होता है, जो भी इल्हामात होते हैं अल्लाह की तरफ से दिल में होते हैं। इमाम का काम बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले पैगंबर बने, बाद में इमाम बने, सरकार के पास दोनों ऑफिस थे, पैगंबर भी थे इमाम भी थे, तो इमाम का काम सबसे मुश्किल होता है। उसकी वजह यह है कि पैगंबर का काम होता है पैगाम को पहुंचा देना, इमाम का काम होता है कि उनके बीच में रह के उनके मकसद तक पहुंचाना, कौम को, कौम के साथ रह के कौम को उसके हदफ तक पहुंचाना, तकालीफ उठा उठा के, ये काम होता है इमाम का, जो कि मुश्किल तरीन काम होता है। इसमें खुसूसन जो अहले बैत के अइमा ताहिरीन थे, उन पर जो अल्लाह ताला ने हिदायत दी वो इल्हाम के ज़रिए हिदायत दी, और वो हिदायत इस तरीके थी कि जब कहा कि वो यहूदूना भी अमरीना, उनको हिदायत दी, अम्र की हिदायत दी, तो क्या वो हिदायत याफ्ता नहीं थे क्या? बहस ही है, कहा कि वो हिदायत याफ्ता के मुकाम पे थे, और उस मुकाम के आगे उनको और ज़्यादा हिदायत मिली। फिर आगे बहस चलती है कि वह अवैना इलहिम फ़ालल खैरात, नेकी की हिदायत दी, फ़ालल खैरात है, कहा कि खैर पर तो थे मुकीम थे ही फ़ाल पर, लेकिन और ज़्यादा खैर की हिदायत दी, खैर तो था ही उनका, तो ये खैर से ऊपर और ज़्यादा खैर की उनको दी हिदायत। वो इकामत सलात, सलात तो थी उनके पास, लेकिन और ज़्यादा बाला तरीन सलात, जैसे इमाम हुसैन सलात पढ़ के चले गए करबला के अंदर, क्या इमाम सज्जा सलात पढ़ते थे, क्या शैतान सांप बनकर आया और मौला के पाँव के पास आ गया और चापता रहा अंगूठे को मौला के, लेकिन मौला ने पलट कर नहीं देखा इमाम सज्जाद ने, इस तरह की सलात की उनको हिदायत थी। वो ईता अ ज़कात, और ज़कात की उनको हिदायत दी। अब क्या ज़कात थी? अहले बैत की जो ज़कात थी, आप सोच सकते हैं किस तरीके से ज़कात देते थे, कि रोटियां थी, अहले बैत ने तीन दिन भूखे रहे लेकिन रोटियां देते चले गए, तो इस तरह की हिदायत उनको मिली जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। वो कानून लना आबिदीन, और वो इबादत गुजार थे, जो उनकी इबादत थी अहले बैत की, हम सोच भी नहीं सकते किस तरह की इबादत करके वो चले गए, तो उनकी जो हिदायत थी वो इतनी आला तरीन थी। तो होता ये था कि जो भी इमाम होता था वो उसकी नूरानियत इतनी होती थी कि उसकी वजह से पूरी की पूरी उम्मत इमाम की नूरानियत का फैज़ हासिल करती थी, और उससे उनके दर्जात बुलंद होते थे, क्योंकि एक तरह से जो नूर का सिलसिला, जो अल्लाह की हिदायत जो इमाम पर होती थी, और वो हिदायत चौ तरफ बट के सबको मिलती थी। खुद को हमने कुव्वत फैसला और इल्म अता किया, और उस बस्ती से उन्हें निजात दी जो बदकारियां करती थी, यकीनन बहुत बुरी और फासिक कौम थी। फिर क्या अल्लाह ने कहा कि लूत को हमने हुक्म दिया और इल्म दिया, मतलब उनको फैसले की कुव्वत दी और उनको इल्म दिया, और उस बस्ती से निकाला जहाँ के लोग खबासत करते थे, सोडोम के अंदर लोग होमोसेक्सुअल थे, तो उस बस्ती से अल्लाह ने उनको نجات دی. انہم کانو قومن سوون فاسقین, وہ فاسق لوگ تھے, وہ قوم جس کو اللہ نے تباہ و تاراج کر دیا تھا. صرف اس پوری قوم کے اندر صرف لوط کا گھر ایسا تھا جو کہ نیکوکار تھا سوائے ان کی بیوی بی کے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو تباہ و تاراج کر دیا. وہ ادخلناہم فی رحمتنا انہ من الصالحین, اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا, یقیناً وہ نیکوکاروں میں سے تھے. تو اس میں رحمت سے کیا مراد ہے؟ میزان نے کہا کہ رحمت سے مراد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ولایت دی تھی, پیغمبر بنایا تھا. انہ من الصالحین, وہ صالح میں سے تھے. جب آپ یہ آیتیں پڑھتے ہیں آپ کو لالچ پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صالح بنا دے. یہ لالچ پیدا ہوتا ہے. تو یہ لالچ جو پیدا ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے, رویا کرا کریں. اور جب آپ ایسی لوگوں میں رہیں کہ جہاں لگتا ہے کہ دین نہیں اور آپ ہی اکیلے ہیں, تو کبھی غم نہیں کرنا کہ آپ دیکھ لیں کیا ہوا انبیاء کے ساتھ. لوط علیہ السلام اکیلے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ان کو فوقیت بخشی, اور وہ آج ان کا اتنا ذکر ہوتا ہے کہ قیامت تک ہوتا رہے گا, کیونکہ انہوں نے اس تکلیف کو اٹھایا تھا. وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, اور ان سے پہلے نوح نے ہمیں پکارا تھا تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا تھا, اور انہیں ان کے اہل کو بہت بڑے کرب سے نجات دی. تو نوح علیہ السلام کے ساتھ جو مشکلات آئی ہیں, کون سو سکتا ہے کس طرح کی مشکلات تھیں. 950 سال انہوں نے تبلیغ کری, کوئی مذاق ہی کیا, اور اتنی تکالیف ہوئیں, اور اس طریقے سے لوگوں نے ان کو دھتکارا, مذاق اڑایا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے اللہ لوط علیہ السلام کے پہلے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھی جب انہوں نے ان کو پکارا, وہ نوح نے اذ نادا, پکارا نوح علیہ السلام جب تھک گئے نوح علیہ السلام, تو انہوں نے پکارا اللہ کو من قبل, تو اللہ نے ان کی دعا سنی اور ان کو اس قوم سے نکالا, اور ان کے جو ساتھ تھے ان کو اس تکلیف سے نکالا, اس کرب سے نکالا. کرب العظیم, کرب سے بنا کربلا, کرب العظیم, تو اتنی بڑی کرب سے ان کو نکالا. ایک وہ کرب تھا جو کہ نوح علیہ السلام کو نکالا, ایک کربلا تھی جس میں امام کس طریقے سے تکالیف اٹھائے. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ, اور اس قوم کے مقابلے میں ان کی مدد کی جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا. بے شک وہ لوگ برے لوگ تھے, لہٰذا ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نصرت کری, نصرنا من القوم الذی, اللہ نے ان کی نصرت کری اس قوم کے خلاف جو کہ ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے. انہم کانو قومن سوئن, جو کہ قوم برے عمل کرتی تھی. فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ, ہم نے سب کو غرق کر دیا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی. جب یہ آپ پڑھتے رہیں, یہ آیتیں آتی رہیں, تو امام حسین کے بارے میں ضرور سوچتے رہیں آپ کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سب کی نصرت کری اور ان کو نجات دی. مولا حسین کا تصور دماغ میں رہے آپ سب کے, وہ داؤد سلیمان اد یحکمان فی الحرث اد وہ داؤد و سلیمان اد یحکمان فی الحرث اد نفشت فیہ غنم القوم وکنا لحکمہم شاہدین, اور داؤد و سلیمان جب دونوں ایک کھیت کا فیصلہ کر رہے تھے جسے رات کو ایک قوم کی بکریاں چر گئی تھیں, اور ہم ان کے فیصلے کے शाहिद थे। ये आयत बड़ी खूबसूरत आयत है, इस पर बड़े डिस्कशन हो चुके हैं और इस पर अपन गौर करेंगे। वो दाऊद सुलेमान इद यहकुमान फिल हरफ, जब दाऊद और सुलेमान ने जब वो फैसला कर रहे थे फिल हरफ एक खेती का, जिसको के कौम की बकरियां रात को चर गई थी, वह कुन्ना लि हुक्मिहिम शाहिदीन, और हम उस फैसले के वक्त शाहिद थे। ये बड़ी खूबसूरत आयत है, बड़ी बहस है। तो जब दाऊद और सुलेमान जब फैसला कर रहे थे, इद यहकुमानी जब फैसला कर रहे थे, दोनों मिलकर फैसला कर रहे थे ना, इज यहकुमान है जब, तो बहस थी। क्योंकि क्या है कि ये जब ये पहले बैकग्राउंड बता दूं तो आपके पास समझ में आ जाए। ये जो बैकग्राउंड बताया गया एल एल बेस से बताया गया पांचों छठे इमाम से, बैकग्राउंड ये है कि एक शख्स के अंगूर का बाग था और दूसरे शख्स की बकरियां रात में चर गई उसको। अब चर गई तो ये बाग वाला आया दाऊद साहब कि मेरी मेरी जो अंगूर की बेले थी इसकी बकरियां चर गई इसको रात में, तो आप इसका फैसला कर दें। तो बाबा बेटे ने दोनों ने मिलकर फैसला करा। तो बहुत से लोगों ने कहा कि बाबा का फैसला सही नहीं था, बेटे का सही था, क्योंकि अभी बहस हो गया है। तो मीज़ान ने कहा कि दोनों के फैसले सही थे। क्यों सही थे? क्योंकि ये पहली जो आया था ये वो, जब ये दोनों ने इद यहकुमान ने जब दोनों ने उसका फैसला कर रहे थे, जब दोनों मिलकर फैसला कर रहे थे, दोनों अंबिया थे, दोनों सादिक थे, तो फिर दोनों कैसे गलत हो सकते हैं? दोनों ही मिलकर फैसला कर रहे थे, फैसले की प्रोसेस में थे, तो दोनों ही तो सही थे। मिजान कहता भाई दोनों फैसला कर रहे थे ना, इस यहकुमान ने दोनों मिलकर फैसला कर रहे थे ना, तो फिर कैसे गलत हो सकते हैं? तो पहली बहस तो ये, जिसे रात को कौम की बकरियां चर गई थी और हम उस फैसले के शाहिद थे, वो कुन्ना लि हुक्मिहिम शाहिदीन, और हम उनके फैसले से के शाहिद थे। अब इसमें भी बहस है, लि हुक्मिहिम उनके फैसले, अब इसमें लि हुक्मिहिम आया है, तो ये जो हिम आया है, जो हिम आया है ये आता है तीन प्लूरल के लिए, दो के लिए नहीं आता, ये तीन के लिए आता, तो ये तीन कौन होगा इसमें? क्योंकि हम उस फैसले के शाहिद थे, तो जो हिम में तीन कैसे आ गए? तो मिर्जा ने बड़ी खूबसूरत बात करी है कि ये जो तीन जो हैं, ये तीन प्लूरल जो आई है, इसका मतलब है कि जितने अंबियाओं ने फैसले करे सब में अल्लाह शाहिद था और सब सबके फैसले सही थे। तो ऐसा आप नहीं सोच सकते कि उनका फैसला गलत था दाऊद अलैहिस्सलाम का। फहन्ना सुलेमान व कुल्लन आतैना हुक्म व इल्मा व सखरना मा दाऊद जिबाल युसब्बिहुन तैर व कुन्ना फाइलीन, और हमने सुलेमान को उसका फैसला समझा दिया और हर एक को हमने हुक्म और इल्म दिया, और हमने दाऊद के साथ पहाड़ों और परिंदों को मुसक्कर कर दिया था जो तस्बीह करते थे, और ये सब कुछ हमने किया था। बहुत खूबसूरत आयत है ये, अगर आप चले जाएं अगर इरफान में तो आप दीवाने हो जाएंगे, तस्बीह करा करते थे पहाड़ और परिंदे, तो आप दीवाने हो जाएंगे अगर आप चले गए उस दुनिया में। खैर अभी इस अभी हम इस बहस में फहन्ना हो सुलेमान, तो हमने सुलेमान को समझा दिया। तो दाऊद अलैहिस्सलाम भाई दोनों इस बात पे तो फैसले में साथ थे कि इसका नुकसान हुआ है इसको दी जाए जजा, ये दोनों साथ थे, तो ये फैसला सही करा दोनों ने मिलके। अब उसमें क्या हुआ कि एग्जीक्यूशन जब हुआ उसका फैसले का, तो उसके अंदर एग्जीक्यूट कैसे कर फैसले को, उसमें अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को सिखा दिया, मतलब वहाँ पर सुलेमान अलैहिस्सलाम की थोड़ी बर्तरी हो गई, बस वहीं हुई है, वरना अब तक दोनों ने फैसला सही करा दिया। नहीं कह सकते दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला गलत करा था, तो क्या सिखाया? क्योंकि दाऊद अलैहिस्सलाम ने कह दिया था कि अब चूंकि इसके बाग का नुकसान हुआ है तो ये बकरियां इसको मिल जाए, तो उन्होंने फैसला कर दिया था कि इसका नुकसान करा, तो फिर अल्लाह सुब्हान अल्लाह का हमने सिखाया सुलेमान को ऐसा ना करो, बल्कि ऐसा करो कि ये बकरी वाला बाग को फिक्स करा, और जब तक इसको खेती नहीं मिलती है जब तक बकरियों के बाल और दूध इसको मिलते रहे, ताकि इसकी रोजी रोटी चलती रहे। तो इसमें क्या हुआ कि नुकसान किसी का ज़्यादा नहीं हुआ, मतलब जिसको बकरी वाले, वो आखिरी बकरी मिल गई, वो बाग वाले का भी नुकसान पूरा हो गया। तो ये जो फैसला था ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट था, है ना, ये अप्रोप्रिएट था। तो इससे क्या मालूम पड़ता है, ये फैसला ज़्यादा लीनेंट था ना, तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि कि अल्लाह सुबहान तआला कितना लीनियंट है, कितना लीनियंट अल्लाह सुबहान तआला बहुत रहमान और रहीम है, इंशाल्लाह हमारे साथ भी अच्छा होगा, अल्लाह से उम्मीद रखे, अल्लाह से सुन रहा है इस वक्त हम जाएँ खबर में, इंशाल्लाह हमारे साथ अल्लाह रहमान रखेगा हमें वक्त। तो इसमें भी बहस है कि ऐसा क्यों हुआ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को सिखाया गया, तो हिलाल ने फरमाया कि इसकी वजह यह भी हो सकती है कि चाहते थे दाऊद अलैहिस्सलाम के बनी इसराइल को बताएं कि ये मेरा वारिस है, ताकि ताकि उनको उनकी फजीलत मालूम पड़े, ये भी बहस है। और फिर इसके बाद क्या कहा गया, जब दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ पहाड़ और परिंदे उनकी तस्बीह किया करते थे, भाई तस्बीह तो पहाड़ यूँ करते हैं वो परिंदे यूँ करते हैं, लेकिन जब वो पढ़ते थे बैठ के ज़बूर तो उनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी और इतनी रूहानियत थी कि वो मिल जाते थे, सबके दिल मिल जाते थे, दाऊद अलैहिस्सलाम का दिल और पहाड़ों का दिल, हालांकि पहाड़ों दिल होते नहीं लेकिन उनमें भी अपनी एक तरह की रूहानियत होती है, और परिंदे सब मिल के तस्बीह करते थे, क्या मंजर होता होगा आप सोच लें, आप सोच लेंगे तो आप दीवाने हो जाएंगे किस तरह का मंजर होता होगा, पूरे पहाड़ मिलकर तस्बीह करने लगे, इतना बड़ा पहाड़ देख के यूँ आपको घबराहट होती है, पूरा पूरा पहाड़ बोलने लगे तो अल्लाह अल्लाह अकबर के अलावा क्या दिल में निकलेगा। और फिर वो उसमें कितनी खूबसूरत है, वो कुन्ना फाइलिन, और वो ये सब कुछ हम नहीं करा था या करीम, कुन्ना फाइलिन, वो कुन्ना फाइलिन, ये हमने किया था सब, अल्लाह सुबहान तआला इतना करीम है, इतना मोहब्बत करने वाला है, फैसला भी सिखाया, तस्बीह भी सिखाई, मतलब जिस तरह के जो इरफान की मंजिलात सिखाई, आप सोचिए क्या इरफान है, सब मिलकर तस्बीह कर रहे हैं अल्लाह सुबहान तआला की, ओके क्या क्या हिकमत है, कैसा इल्म दिया, दुआ अल्लाह सुब्हान तआला से कि अल्लाह ताला हमको भी कुछ फैसले की ताकत दे, अल्लाह ताला हमारे भी इरफान को कुछ बढ़ाए ताकि हम भी कुछ तस्बीह करने लगे। वो अल्लम ना हो सना, वो अल्लम ना हो सना तलब सिल्लकुम ली, वो अल्लम ना हो सना तलब सिल्लकुम ली تحسنكم من بسكم وعلمنا وصنع طلب وصل لكم لتحسنكم من بسكم فهل أنتم شاكرون اور ہم نے انہیں تمہارے لیے زرہ بنانا سکھائی تھی ایک دوسرے کے وار سے بچائیں फिर क्या तुम शुक्र करने वाले हो। तो खुसूसन दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़िरा बनाना सिखाई थी ताकि मोमिनीन अपने आप को रोक सकें दुश्मन के ख़िलाफ़, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से उनको दिया गया इल्म था, क्योंकि जितने भी अंबिया थे किसी की रोज़ी रोटी नहीं खाते थे, ख़ुद कमाते, तो अल्लाह सुबहान तआला ने उनको ये ख़ास फ़न दिया था, हालांकि उनकी इतनी बड़ी हुकूमत थी दाऊद अलैहिस्सलाम की, लेकिन किसी का खाते नहीं थे वो, या अल्लाह, तो अल्लाह सुबहान तआला ने अतिया दिया था कि तुम बनाओ ज़रा दाऊद, उसको बेचो और अपना काम चलाओ, तो मेहनत किया करते थे। अब आप सोचें कि ये मेहनत उनकी दाऊद अलैहिस्सलाम की थी, पूरा मुत्तकियों को देखें हमेशा बाग में यहूद के काम करते थे और अपनी रोज़ी रोटी खाते थे, पाँच इमाम के बारे में पसीने में तर होते थे पाँच इमाम रोज़ी रोटी कमाने के लिए, यही तो होता है शेबाब अंबिया का अहले बैत का कि पसीने में तर बतर होकर रोज़ी रोटी कमाया करते थे। उसके बाद अल्लाह की तरफ इंसान बुला सकता है जब आप किसी के मोहताज नहीं होते हैं, ताकि आपको किसी का खौफ और डर ना रहे, यही तो फोकियत होती है। वली सुलेमान रीहा आसिफतन तजरी भी अमर ही इल अर्द लती बारकना फ़िहा व कुन्ना भी कुल्ल शैन आलमीन, और सुलेमान के लिए तेज़ व तुंद हवा मुसखर कर दी जो उनके हुक्म से सरजमीन की तरफ चलती थी, जिसमें हमने बरकतें रखी थी और हम हर चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने जो सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो हुकूमत दी थी वो किसी को नहीं दी थी इस तरीके की, मतलब उनकी हुकूमत हवा पर भी थी कि हवा तेज़ हवा भी को भी उन्होंने सुलेमान का ताबे कर दिया था, दोनों हवाएं उनके ताबे थी, तेज़ वाली भी और जो मंद चलती थी, तो क्या करती थी, और खुसूसन उस ज़मीन की तरफ जहाँ वो रहते थे, कहाँ रहते थे, बैतुल मुक़द्दस, तो क्या होता था कि हवाएं तेज जाती थी, उससे वो हवा पे सवार होते थे लश्कर के साथ और वापस भी आते थे, क्योंकि वो उनकी हुकूमत चौ तरफ थी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये चीज़ हमने करी थी, उनको बरकत दी थी, इस तरीके की बरकत दी थी जो कि इस तरह से वो किया करते थे। وَمِنَ الشَّيَاطِينَ مَنْ يَغُوثُونَ لَهُ يَعْمَلُوا عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينَ مَنْ يَغُوثُ لَهُ يَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اور کچھ شیاطین بھی ان کے تابع بنا دیے تھے جو ان کے لیے سمندر میں गोता लगाते थे और उसके अलावा भी कई काम अंजाम देते थे और हम ही उनके निगरान थे। ये बड़ी खूबसूरत आयत है, कौन शयातीन थे और क्या करते थे। तो सूरह सबा में इसका डिटेल है, लेकिन इसमें थोड़ा अल्लाह ने कह दिया है, सूरह सबा में समझाया अल्लाह ने क्या क्या किया करते शयातीन। तो शयातीन कौन थे? ये जिन्नात थे। जिन किसको बोलते हैं? जिन उसको बोलते हैं जो दिखता नहीं है। तो ये जो जितने शयातीन होते हैं, शैतान हम कहते हैं, सब जिन्नात हैं, इनकी पूरी कौम है। तो उसमें से शयातीन थे अल्लाह ने कहा कि जो हमने उनको उनके काम के लिए लगा दिए थे, तो वो उनकी सुनते थे। वो तो क्या काम करते थे? वो शयातीन भी अच्छे बुरे दोनों होते हैं ना, जिन्नात दोनों होते हैं, मोमिन भी होते हैं, काफिर भी होते हैं, कमबख्त भी होते हैं, लेकिन ताकतवर बहुत होते हैं, काफ़ी एबिलिटी होती है उनकी। तो अल्लाह ताला ने उनको उनके उनके काबू में कर दिए थे और अल्लाह उनका निगरान था। अल्लाह उन जिन्नात का भी निगरान था जो किया करते थे काम। तो क्या क्या किया करते थे कि समंदर में गोता लगा के जेवरात निकालते थे। इसमें गोते की बात है ना, समंदर में घुस के मोती और जेवरात निकालते थे और फिर दूसरे काम भी करते थे। तो सूरह सबा के अंदर बताया गया क्या क्या काम किया करते थे। बड़ी बड़ी देगह बनाते थे और भी मेलात बनाते थे, बड़ी बड़ी इमारतें तामीर किया करते थे। वो इतनी कैपेबिलिटी थी उन लोगों की, शयातीन की। तो ये सब कुछ अल्लाह ताला ने उनके काबू में कर दिया था। तो इस तरह की चीज़ें दी गई थी, अता की गई थी। तो फिर उसके बाद ये सब कुछ पैगंबरान को अल्लाह ने दिया और इन पैगंबरान का जिक्र इस सूरह अंबिया में है। लेकिन इन सब पैगंबरान के जो वारिस थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे। आप देखें सारे पैगंबर का जिक्र हो रहा है, सबको अल्लाह ताला ने निजात दी, फोकियत दी और वह आराम से रहे। और आप देखें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ। अब इसके अंदर जो बताया गया कि फ़ेल अलखैरात विकामत सलात वो ईता ज़कात, ये जो आयत जो आई है इमाम के लिए, इमाम हुसैन को आप देखें करबला के अंदर के फ़ेल अलखैरात किस तरह की खैरात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दी और किस तरह की सलात को उन्होंने कायम करा और किस तरह की ज़कात उन्होंने दी, किस तरह के खैरात करी, कितने नेक अमल इमाम हुसैन ने करे। अभी मेरे पास वक्त नहीं बताने हुआ आपका, आपको ख़ुद मालूम है, मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह आप जानते किस तरह की खैरात करी, किस तरह की सलात करी, किस तरह से उन्होंने ज़कात दी, किस तरह से कुर्बानियाँ करी। तो जिस तरह से बताया गया है कि जो भी इमाम होता है उसकी एक रूहानियत होती है, वो रूहानियत फैलती है। आप सोचें कि जिस तरह की कुर्बानी हुसैन ने दी उसकी रूहानियत का अंदाज़ा कोई लगा नहीं सकता कि आज चैलम होता है करोड़ों लोग जाते हैं, ये उनकी रूहानियत है। और ये रूहानियत की इंतहा ये कि इमाम मौला मेहदी आएंगे और आगे इस दुनिया पर हुकूमत करेंगे, वो भी इमाम हुसैन की रूहानियत की वजह से। अल्लाह अल्लाह को मतलब आलमी।